ये आस्था कौन है? वीर, जो एक साल से तो भूखे भेड़िये की तरह तड़प रहा था, उसकी जिंदगी में एक साल से कोई लड़की नहीं आई थी। उसने सोचा कि काश उसे कुछ पैसे मिल जाते तो वो किसी लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारने लिए फिर से उसी क्लब में चला जाएगा जिस क्लब में वो अक्सर जाया करता था। इसके लिए उसे कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत थी। अब आगे वीर ने सोचा कि अगर वो नौकरों का काम कर रहा है तो क्यों ना अभिमान जी से ही पैसे मांगे। भले ही अभिमान ने अभी तक उसे गले से ना लगाया हो, लेकिन उसे ये तो पता था कि वो उसका बाप है, तो उसने सोचा क्यों ना बेटे वाली ट्रिक अपनाई जाए और अभिमान से सीधे सीधे 3 लाख रुपए मांगे जाएं, ताकि कम से कम एक रात ही सही वो अपना मजा ले सके। ये सोचकर वीर कुछ अलग तरह के ख्वाब बुनने लगता है, लेकिन तभी उसे रौना की थोड़ी तेज आवाज सुनाई दी। अरे वसुंधरा आंटी, कहाँ चली गई हैं आप? प्लीज जल्दी आइए। अब वसुंधरा को जैसे ही रौना की आवाज सुनाई दी, वो पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने कमरे में आराम करने आई थी और अब रौना की आवाज सुनकर वो गुस्से से उठ खड़ी हुई और सीधा बाहर की ओर चली गई। वहीं वसुंधरा का नाम सुनने पर अरमान तिरछी नजरों से रौनक को देखने लगा। उसने सोचा, पता नहीं ये लड़की अब क्या तमाशा करना चाहती है। वसुंधरा जल्दी ही रौनक के सामने आकर खड़ी हो गई। तब रौनक मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी जाकर मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाकर लाइए, अभी अचानक मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है। और हाँ, सब्जी चटपटी मसालेदार होनी चाहिए, जैसे आस्था बनाया करती थी, बिल्कुल वैसी ही। अब जैसे ही रौनक के मुंह से आस्था का नाम निकला, अरमान जो लगातार अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, वो अचानक ही रुक गया। उसने सिर उठाकर रौनक की ओर चुपके से देखा, क्योंकि आस्था का नाम सुनकर उसके दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई थी। लेकिन उसका दिमाग, जो कि सारी यादें भूल चुका था, इसलिए उसने उस वक्त के लिए खुद को शांत किया। अब अरमान आस्था के बारे में उन लोगों से पूछताछ करके खुद को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता था, क्योंकि आस्था के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो उनसे ये नहीं पूछ सकता था कि ये आस्था कौन है और अचानक से रौनक ने आस्था का नाम क्यों लिया। अब जैसे ही रौनक ने अनजाने में आस्था का जिक्र किया, सब लोग एक बार फिर सकपका गए और आश्चर्य से रौनक को देखने लगे थे। वहीं आहान तो आंखों ही आंखों में रौनक को इशारा करने लगा था, अरे मेरी माँ, बस कर, क्यों बार बार शेर के मुंह में हाथ देती रहती है? हाँ, अगर इस शेर को गुस्सा आ गया तो वो तुझे उठाकर बाहर फेंक देगा, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? आहान की सुई हमेशा बार बार आकर उसके बच्चे पर अटक जाया करती थी। हालांकि वो रौनक से उतना ही प्यार किया करता था, लेकिन फिलहाल उसे अपने बच्चे के आने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसका बस चलता तो वो 5वें महीने में ही अपना बच्चा अपने हाथ में ले लेता। फिलहाल रश्मि ने तुरंत रौनक के कंधे पर हाथ रखा और उसे चुपके से कुछ इशारा किया। रश्मि का इशारा मिलते ही रौनक ने बात को हंसी में टालते हुए जल्दी से बहाना बनाया, मेरा मतलब है जो पास में ही नहीं है, आस्था रेस्टोरेंट, वहां पर पनीर बनता है एकदम चटपटा मसालेदार, वैसा ही पनीर आप मेरे लिए बना कर ले आइए प्लीज। अब जैसे ही रौनक ने बातों को घुमाकर आस्था रेस्टोरेंट नाम बताया, तो वैसे ही कहीं ना कहीं अरमान को मन में तसल्ली महसूस हुई कि उसने उनसे बेकार में पूछताछ करके अपने आसपास के माहौल को नहीं बिगाड़ा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आस्था कौन है। फिलहाल रेस्टोरेंट का नाम सुनकर अरमान भी उस वक्त के लिए शांत हो गया और एक बार फिर उसकी उंगलियां अपने कीबोर्ड पर चलने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सम्राट ठाकुर, जो कि इस वक्त अपने ऑस्ट्रेलिया के शानदार विला में बैठा हुआ था, वहां 2 दिन पूरे होने को आए थे, लेकिन अभी तक आस्था का उन गुंडों के साथ फाइट करना और सम्राट को एक जिद्दी सी नजर से देखना, ये दृश्य उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। वो बार बार सिर्फ यही सोच रहा था कि वो लड़की कौन हो सकती है, क्योंकि आज तक सम्राट ने कितनी ही सारी लड़कियों के साथ रात बिताई थी, लेकिन उसने कभी इस तरह की बहादुर और ताकतवर लड़की के साथ कोई रात नहीं बिताई थी। तो उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया था कि वो उस लड़की के साथ रात बिताना चाहता है। उसे कोई मोहब्बत या ऑब्सेशन नहीं हुआ था, उसे सिर्फ अट्रैक्शन हुआ था और इसी अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए वो उस लड़की के साथ रात बिताना चाहता था। वहीं रॉकी पूरी तरह से कन्फ्यूज था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसके बॉस ने उसे किसी तरह का कोई काम नहीं दिया था और ना ही अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी बेची थी, जबकि उसका असली मकसद यही था कि वो वहां की प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा एक अननोन अकाउंट में जमा करना चाहता था, जहां पर वो अब तक अरबों की रकम जमा करवा चुका था, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी और सारा बैंक बैलेंस उन्होंने इंडिया में ही बने एक अकाउंट में जमा करवाया था। वहीं से वापस जाकर वो उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे। कहीं ना कहीं राजवीर का इरादा काफी सारी प्रॉपर्टी और पैसे के जरिए सिंघानिया मेंशन का साम्राज्य खरीदने का था और एक ही दिन में वो अरमान को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि अरमान सिंघानिया की यादें, वो तो खो चुका था और यादें खोने के बाद वो बिल्कुल हार्टलेस और इमोशनलेस हो चुका था, ये बात भी वे लोग जानते थे। लेकिन अरमान की एक सबसे बड़ी ताकत थी उसका काम, क्योंकि उसका काम हमेशा नंबर 1 रहता था,
इसलिए तो पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। लेकिन राजवीर और सम्राट का इरादा कहीं ना कहीं अरमान के साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह करके डेविल किंग की कुर्सी भी छीन लेने का था, ताकि वे सिर्फ उसके इमोशंस ही नहीं बल्कि उसके पावर और पोजीशन को भी खत्म कर सकें। इसके लिए उन्हें ढेर सारे रुपयों और पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी, और इसी रुपये पैसे के लिए अब सम्राट अपनी अलग अलग कमाई हुई प्रॉपर्टी, जितनी भी उसने आज तक अलग अलग देशों में बनाई थी, उन सबको बेचकर इंडिया में अपने नए अकाउंट में जमा करवा रहा था। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में आए उसे 2 दिन हो चुके थे। अब तक वो कितने ही शहर और कितने ही देशों में जा चुका था। अपने प्राइवेट जेट का सफर रात में करता, अगले दिन प्रॉपर्टी बेचकर अगले शहर के लिए निकल जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आए उसे 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे, और अभी तक उसने जाकर प्रॉपर्टी बेचने का नाम तक नहीं लिया था। वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी की यादों में खोया हुआ था। रॉकी पूरी तरह से कंफ्यूज था, और वो अपने बॉस से जानना भी चाहता था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, वो अभी तक यहाँ की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच रहे हैं। तब सम्राट ने गहरी सांस ली और रॉकी को देखकर कहा, मैं पिछले 10 दिनों से अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है, क्योंकि अब मेरा दिल उसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मचल रहा है, क्योंकि जिस तरह की उसमें हिम्मत थी, ताकत थी, उसी हिम्मत और ताकत के साथ मैं उसके साथ रातें बिताना चाहता हूँ। और एक नहीं बल्कि सम्राट ठाकुर ने फैसला किया था कि पहली बार वो अपना रोल उस लड़की के लिए तोड़ने जा रहा है, और उसके साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 रातें बिताना चाहता हूँ। अब ये सुनकर रॉकी पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि उसने तो उस लड़की को देखा भी नहीं था। जिस वक्त सम्राट किसी से फोन पर कुछ जरूर डिस्कशन कर रहा था, उसी वक्त रॉकी अपने आदमियों को लेकर किसी आदमी को उठाने जा रहा था, ताकि वो उसे अच्छी तरह से सबक सिखा सके, क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ डील करने से साफ मना कर दिया था। ये बात ब्लैक डेविल किंग को बुरी तरह हर्ट कर गई थी, इसलिए रॉकी अपने आदमियों के साथ वहां गया हुआ था। लेकिन जब वो वहां से वापस आया, तब तक आस्था वहां से जा चुकी थी, तो रॉकी ने आस्था को नहीं देखा था।
लेकिन आस्था ख्याल सम्राट के दिमाग से जा ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने मन बना लिया था कि जब तक वो उसके साथ रात नहीं बिताएगा, तब तक शायद उसके दिमाग से वो लड़की ना जाए। इसी सोच के साथ उसने रॉकी को उसे ढूंढने के पीछे लगा दिया था। वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया में बैठे हुए राजवीर ने जल्दी ही एक अनजान कॉल लगाया, और वो कॉल उसने किसी और को नहीं बल्कि उसी को लगाया था जिसके जरिए उसने अरमान की बॉडी में वो वायरस इंजेक्ट करवाया था जिसने उसकी यादें छीन ली थीं। आखिरकार राजवीर एक जीनियस था, उसे अच्छी तरह पता था कि वो कब, कितना और किसकी मेमोरी डिलीट कर सकता है और कितना उसके साथ खेल सकता है। इसी खेल के सहारे उसने अपना एक ऐसा काला साम्राज्य खड़ा किया था जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो अब एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था अरमान को चारों तरफ से डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो न केवल अरमान को हराना चाहता था बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता था। राजवीर ने एक अनजान व्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए अरमान की बॉडी में वो वायरस इंजेक्ट कराया था जिसने उसने खुद बनाया था। राजवीर को जैसे ही ये पता चला कि अरमान अभी इंडिया में अपने प्राइवेट जेट के द्वारा कहीं जा रहा है, तो उसे साफ लग गया था कि ज़रूर वो अब सम्राट का अंत करने निकला है, और इसीलिए जैसे ही सम्राट का आदमी रॉकी उसे हॉस्पिटल लेने आया, उसी वक्त राजवीर ने सेंस कर लिया था कि शायद आज सम्राट का आखिरी दिन है। राजवीर उसे बचाना भी चाहता था, लेकिन फिलहाल वो जानता था कि अगर अरमान ने उसकी जान लेने का फ़ैसला किया है तो उसे बचा पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और फटाफट अरमान के चोपर में अपना प्लान फिट कर दिया। उसने अरमान के जेट के पायलट को बदल दिया और वहां पर एक अनजान व्यक्ति को बैठा दिया। और ठीक उसी वक्त जैसे ही डेविल किंग यानी अरमान ब्लैक डेविल का अंत करके वापस आया और अपने जेट में बेफिक्र होकर बैठ गया, क्योंकि उसका इरादा वहां से सीधा ऑस्ट्रेलिया जाने का था और वहां जाकर अपने अंश और आस्था को वापस लाने का था। जैसे ही अरमान ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दिए कि उसे ऑस्ट्रेलिया ले चले, उसी वक्त उस अनजान व्यक्ति जो राजवीर द्वारा बनाए गए वायरस के साथ वहां मौजूद था, उसने मौका देकर तुरंत अरमान की गर्दन के पीछे वार कर दिया। अरमान उस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। फिलहाल आगे के इंस्ट्रक्शन एक बार फिर उस अनजान व्यक्ति को देने के बाद राजवीर ने गहरी सांस ली और एक बार फिर पागलों की तरह जोर जोर से डेविल स्माइल करने लगा। फिर वो सीधा अपनी डाक विला की लैब में चला गया। उस लैब को उसने दोबारा क्रिएट किया था और अब वहां एक बेहद बदसूरत लड़की लेटी हुई थी। इस लड़की का आधा चेहरा पूरी तरह से चला हुआ था। वो लड़की नाइजीरिया में अपने पति के साथ घूमने के लिए आई हुई थी, जिसे राजवीर के आदमियों ने उसके कहने पर अगवा किया था। लैब में राजवीर उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने उस लड़की की बदसूरत स्किन को बदलकर नॉर्मल स्किन में ढाल दिया और उसने उसके चेहरे को अपनी खूबसूरत मर चुकी बीवी के चेहरे जैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन राजवीर का पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी बीवी की मौत के बाद उसकी सारी मेमोरी एक स्पेशल चिप में सेव कर रखी थी। अब वो उन यादों को धीरे धीरे उस लड़की के दिमाग में डाल रहा था।
वो अपनी पत्नी को एक बार फिर जिंदा करना चाहता था। धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे पर राजवीर की बीवी की झलक नजर आने लगी और उसकी आंखों में वही भाव आने लगे जो उसकी बीवी को देखकर आया करते थे। अब वो बिल्कुल राजवीर की बीवी जैसी लग रही थी। राजवीर 56 साल का होते हुए भी केमिकल के जरिए खुद को जवान बनाए बैठा था। उसके पास किसी भी नौजवान से ज्यादा ताकत थी। अब वो एक बार फिर राजा जैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार था, और इस बार तो उसके पास उसकी मनपसंद क्वीन भी थी। राजवीर उस यंग लेडी को देखकर डेंजरस स्माइल करते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, तूने मुझे मेरी मुर्दा बीवी से दूर किया था ना, लेकिन देख, मैंने अपने लिए जीती जागती बीवी एक बार फिर बना ली है। पर अफसोस कि मैं तेरी बीवी के जिंदा रहते ही तुझे उससे हमेशा के लिए अलग कर चुका हूँ। राजवीर की आंखें बंद थीं, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह डेंजरस लग रहा था। अचानक उसने अपनी उंगलियों से उस औरत के चेहरे को अजीब तरह से छूना शुरू किया, क्योंकि अब वो लड़की पूरी तरह से उसकी बीवी की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में अरमान, जो कि इस वक्त अपना काम करते हुए वो बड़े ही ध्यान से सबको ऑब्जर्व कर रहा था, कहीं ना कहीं वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने सोचा, इतनी सारी लड़कियां सिंघानिया मेंशन में आकर रह रही हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आखिरकार मैंने इन लोगों को यहां रहने की इजाजत कैसे दे दी? अरमान सब कुछ कर सकता था, लेकिन लड़कियों और औरतों से वो बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखा करता था। फिलहाल अब वसुंधरा ने जल्दी ही रौनक के लिए चटपटे से पनीर बनाकर रख दिए थे और जल्दी ही रात का डिनर टेबल पर सजा दिया था। सब लोग एक फैमिली की तरह एक साथ डिनर किया करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सारी लड़कियां अरमान के सामने डिनर करने से हिचकिचा रही थीं। वहीं आकाश अपनी प्रेग्नेंट बीवी के बिना टेबल पर नहीं जाना चाहता था। वहीं सुमित और ध्रुव का भी यही हाल था, वो भी अपनी अपनी बीवियों के बिना भला डिनर करने के लिए कैसे जा सकते थे। कहीं ना कहीं नानी माँ ने सब कपल्स के दिल का हाल जान लिया था, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर दादाजी की ओर शांत नजरों से देखकर अगले ही पल कोमलता से बोली, अरे भाई साहब, चलिए ना, खाना लग गया है, और बच्चों तुम सब भी आ जाओ, सबके सब खाना खाओ बेटा। साथ में खाना खाने से खाने में बरकत होती है, तो इसीलिए पूरे परिवार को एक साथ खाना खाना चाहिए। जानबूझकर नानी माँ अरमान के सामने घर परिवार और फैमिली का जिक्र कर रही थीं, ताकि धीरे धीरे अरमान उन सबको दिल से अपना ले, क्योंकि नानी माँ ये बात समझ चुकी थीं कि अरमान किसी को भी दिल से अपनाने के लिए इस वक्त पूरी तरह तैयार नहीं है। दादाजी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए टाइगर मारिया की तरफ देखकर जल्दी से बोले, चलो बेटा, आप दोनों भी खाना खाने आओ। इतना कहकर दादाजी टाइगर और मारिया को जबरदस्ती टेबल तक ले आते हैं। फिलहाल नानी माँ की बात सुनकर अरमान ने तिरछी नजरों से उन लोगों की ओर बेमन से देखा और इरिटेट होकर सोचने लगा,